नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के खुदरा क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कवायद के तहत जर्मनी की कंपनी मेट्रो एजी के भारत में थोक परिचालन का 2850 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी, एक संयुक्त बयान में कहा गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुषंगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया में 100% इक्विटी हिस्सेदारी के 2850 करोड़ रुपए में अधिग्रहण के लिए आज एक पक्का समझौता किया। इस अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल को कई अहम शहरों में मौके की जगहों पर 31 बड़े आकार के मेट्रो इंडिया स्टोर्स तक पहुंच मिल जाएगी। इसके अलावा वह बड़ी संख्या में पंजीकृत किराना एवं अन्य संस्थागत ग्राहकों और आपूर्ति के मजबूत नेटवर्क से भी जुड़ जाएगी। बयान में कहा गया कि यह सौदा मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। RRVL के निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, यह अधिग्रहण छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग के जरिए साझा समृद्धि का अनोखा मॉडल बनाने की हमारी नई वाणिज्यिक रणनीति के अनुरूप है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण विभिन्न प्रबंधन पदों पर लघु अवधि के अनुबंध के आधार पर भर्तियां करना चाहता है, जिसके लिए उसने आवेदन आमंत्रित किए हैं। एक सार्वजनिक नोटिस में बताया गया कि NFRA ने कार्यकारी निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, डिप्टी महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक तथा सहायक प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी और 2 वर्षों का विस्तार दिया जाएगा। NAFRA कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत लेखाकार पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक है। दूरसंचार उद्योग के वैश्विक निकाय JSM एसोसिएशन ने दूरसंचार विभाग से कहा कि उसे 6000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी बैंड के आवंटन पर काम शुरू करना चाहिए। JSMA ने विभाग को लिखे एक पत्र में कहा कि भविष्य में 5G सेवाओं के विस्तार के लिए ऐसा करना जरूरी है। सरकार ने 3370 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी की, जिसे मध्यम बैंड के रूप में जाना जाता है। इसे 5G सेवाओं के लिए सबसे उपयुक्त बैंड के रूप में पहचाना गया। JSMA का अनुमान है कि 2025 से अगले 5 वर्षों तक 5G की जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्यम बैंड के लिए कुल स्पेक्ट्रम की मांग लगभग 2000 मेगाहर्ट्ज प्रति बाजार होगी। JSMA ने कहा, मौजूदा उपयोगकर्ता के कारण IMT के लिए 3.5 गीगाहर्ट्ज में सीमित स्पेक्ट्रम के कारण कई सरकारें और नियामक उनके लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में आवंटन करने पर विचार कर रहे हैं। वैश्विक दूरसंचार निकाय के सदस्यों में रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं। एक सख्त माहौल में मौद्रिक नीति कार्रवाई में समय से पहले रोक लगाना एक महंगी नीतिगत गलती साबित हो सकती है। मौद्रिक नीति समिति में 5 अन्य सदस्यों के साथ ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बारे में फैसला करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये राय जाहिर की थी। MPC ने इस महीने की शुरुआत में रेपो दर में 0.35% की बढ़ोतरी की। बैठक के ब्यौरों को बुधवार को जारी किया गया। दिसंबर में इस बढ़ोतरी से पहले RBI ने 4 बार में रेपो दर में 1.90% की वृद्धि की। MPC के ब्यौरे में कहा गया, मेरा विचार है कि मौद्रिक नीति कार्रवाई में समय से पहले ठहराव का फैसला इस समय एक महंगी गलती साबित होगा। अनिश्चित परिदृश्य को देखते हुए ये कैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जहां बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के दबाव को दूर करने के लिए हम खुद को बाद में बैठकों में मजबूत नीतिगत कार्रवाई करते हुए पा सकते हैं। ये बैठक 5 से 7 दिसंबर के दौरान हुई थी। नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को मुंबई और बेंगलुरु हवाई अड्डे के संचालकों से यात्रियों की अतिरिक्त आवाजाही को संभालने के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार करने को कहा। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जहां भी जरूरी हो हवाई अड्डे की प्रणाली और प्रक्रियाओं को नए सिरे से डिजाइन किया जाए। विभिन्न हवाई अड्डों पर भीड़ की शिकायतों के मद्देनजर मंत्रालय ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे हालात दोबारा पैदा होने की आशंका कम है। नागर विमानन सचिव राजीव बंसल ने बुधवार को व्यस्त अवधि के दौरान भीड़भाड़ कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए मुंबई और बेंगलुरु हवाई अड्डे के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में एक कार्यक्रम में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपनी राय व्यक्त की। दास ने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की वजह से अगला वित्तीय संकट आ सकता है। RBI गवर्नर ने प्राइवेट क्रिप्टो को इसका दोषी ठहराया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने माइक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा होता है। शक्तिकांत दास ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने में विफल रहने से अगले वित्तीय संकट को बढ़ावा मिल सकता है और उन्होंने डिजिटल बैंकिंग जरूरतों के लिए एक नया ई रुपया बनाने का आग्रह किया। दास ने कहा कि आरबीआई के लिए एक मुख्य चिंता ये है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स BFSI इनसाइट समिट में दास ने दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का उदाहरण भी दिया। FTX के पूर्व CEO सैम बैकमैन फ्राइड को पिछले हफ्ते बहामास में उनके पेंटहाउस से अरेस्ट किया गया था। वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के चलते बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त रही। इस दौरान BSE का 30 शेयर वाला सूचकांक 397.14 अंक की तेजी के साथ 61,464.38 अंक पर पहुंच गया। व्यापक NSE निफ्टी 119.65 अंक बढ़कर 18,318.75 अंक पर था। सेंसेक्स में सन फार्मा, HCL टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, बजाज फाइनेंस, ITC और अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।